मेरे बहुत बहुत प्यारे साथियों, आप सभी को डॉक्टर विजय अग्रवाल का बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। मित्रों, आज 11 मार्च 2019 है और आज के इस afias.com के डेली ऑडियो लेक्चर में मैं आप सभी का हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं और साथ ही हार्दिक रूप से अभिनंदन भी करता हूं। फ्रेंड्स, आज के लेक्चर में मैं अब नदी घाटियों की सभ्यताओं पर कुछ बातें करना चाहूंगा और डेफिनेटली चूंकि यहां से हमारे इतिहास की सही शुरुआत होती है, जिसे हम एक प्रामाणिक इतिहास कहते हैं या लिखित इतिहास कहते हैं। इससे पहले का तो जो इतिहास रहा है वो ज्यादातर अनुमान पर आधारित है, लेकिन ऐसा भी नहीं कि वो अवैज्ञानिक हो, अनुमान के भी अपने वैज्ञानिक तरीके हैं, लेकिन सही इतिहास की शुरुआत नदी घाटी की सभ्यताओं से होती है, या यूं कह लीजिए कि सभ्यता और संस्कृति की शुरुआत नदी घाटियों से होती है। तो इसकी शुरुआत मैं अब इस लेक्चर से कर रहा हूं। देखिए, जब हम नदी घाटियों की सभ्यताएं इस शब्द का इस्तेमाल करते हैं तो मैं ये बता चुका हूं कि नदी घाटी क्यों, क्योंकि वहां पानी था, उससे आप खेती कर सकते थे, खुद के लिए, पशुओं के लिए, पीने के लिए पानी पा सकते थे, सिंचाई के लिए पानी था। नदी के किनारे की मिट्टी भी आपको मालूम होगा कि उपजाऊ होती है। देखिए, हमारे यहां जो गंगा कि जो पूरा का पूरा मैदान है जो इतना उपजाऊ है वो क्यों है, क्योंकि गंगा की जो नदी है प्राचीनतम काल से अगर लें तो जब भर जाती होगी तो मिट्टी लेकर के आती है और बाढ़ आती है और फिर वो पूरे के पूरे मैदानी क्षेत्रों में फैल जाती है वो मिट्टी, और इसके बाद जब बाढ़ उतर जाती है तो नदियां अपने सिस्टम से बहने लगती है। तो नदियों के जो कछार होते हैं, नदी घाटियां जो होती हैं, वो बहुत ही उपजाऊ मानी जाती हैं। गंगा का मैदान इसका प्रमाण है, आप ज्योग्राफी में पढ़ चुके हैं। तो ठीक यही स्थिति हम इन तीन नदी घाटी सभ्यताओं के बारे में भी पाते हैं। मैंने कहा तीन नदी घाटी की सभ्यताएं, वो सभ्यताएं कौन है? एक सभ्यता के बारे में आप बहुत अच्छे से जानते हैं जिसे आप सिंधु घाटी की सभ्यता कहते हैं, जहां हम हैं, हम उसी सभ्यता के आप कह लीजिए कि वारिश हैं। दूसरी जो सभ्यता है मित्रों, वो मिस्र की सभ्यता कहलाती है। मिस्र तो एक देश का नाम है, लेकिन घाटी के तहत हम कहेंगे नील नदी घाटी की सभ्यता, नील नदी की घाटी। यहां भी आप जो वहां सिंधु नदी थी, यहां नील नदी है। जो तीसरी सभ्यता है वह है सुमेर की सभ्यता, लेकिन नदी के नाम पर इसे हम कहते हैं दजला फरात की घाटी, दजला फरात की घाटी। दजला फरात दो नदियां हैं जिन्हें इंग्लिश में कहा जाता है टाइग्रीज और यूफ्रेटिस। ये तीन नदी घाटियां हैं और इनकी सभ्यताओं के बारे में अब हम थोड़ी थोड़ी जानकारी लेंगे। तो सिंधु घाटी की सभ्यता पर बेहतर होगा हम बाद में यदि जरूरत हुई तो बात करेंगे, अभी मैंने इसका डिसीजन नहीं लिया है, लेकिन आप अगर समझते हैं कि सिंधु घाटी की सभ्यता पर बात की जानी चाहिए तो मैं उस पर भी बात कर सकता हूं, लेकिन इस पर अभी हम लोग विचार बाद में करेंगे, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि सिंधु घाटी की सभ्यता पर किताबों में लिखा हुआ है और बहुत ज्यादा कोई उलझन भी वहां नहीं है, जटिलताएं भी नहीं है, तो उसको तो आप लोग अपने तरफ से भी बहुत अच्छे से तैयार कर सकते हैं। हाँ, मिस्र की सभ्यता और जो सुमेर की सभ्यता है उसके बारे में मैं जरूर कुछ ऐसे बिंदुओं की तरफ आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा जो दुनिया के इतिहास को समझने के लिए जरूरी है। मैं केवल भारत के इतिहास की बात नहीं कर रहा, मैं दुनिया के इतिहास को समझने की बात कर रहा हूं। तो कम से कम इन दो सभ्यताओं पर तो हम लोगों को बहुत अच्छे से बात करनी ही चाहिए। तो दोस्तों, मैं शुरुआत कर रहा हूं मिस्र की सभ्यता से। मिस्र की सभ्यता, जिसे हम नील नदी की घाटी की सभ्यता भी कहते हैं। देखिए, जो सिंधु घाटी की सभ्यता है, पुस्तकों में अभी तक इसका जो काल निर्धारण हमने किया है लगभग 2300 से 2500 ईस्वी पूर्व तक का काल निर्धारण है, 2500 से 2300 ईस्वी पूर्व। लेकिन जो नील नदी की घाटी है इसे माना जाता है 3500 वर्ष पूर्व। तो इस रूप में आप कह सकते हैं कि जो नील नदी की घाटी की सभ्यता है ये सिंधु घाटी की सभ्यता से भी कहीं 1000 वर्ष पुरानी सभ्यता है। मतलब विश्व की प्राचीनतम सभ्यता अगर हम तीनों में से लें, अभी मैंने तीन नदी घाटी सभ्यताओं की बात आपको बताई, और देखिए ये सारी बातें आपके दिमाग में बहुत क्लियर होनी चाहिए, ये याद करने की चीज नहीं है, ये दिमाग में आप थोड़ा से मेरी बातों को ध्यान से सुन लेंगे, अटेंशन के साथ सुन लेंगे तो चीजें क्लियर होती चली जाएंगी और आपके दिमाग में मौजूद रहेंगी, इन्हें दोहराने की भी बार बार जरूरत नहीं पड़ती। हाँ थोड़ा सा बीच बीच में देख लेंगे तो चीजें ज्यादा क्लियर होने लगती हैं, भूलने की जो अब हमारी एक स्वाभाविक आदत होती है उसमें थोड़ी सी रुकावट आ जाती है, थोड़ा प्रतिबंध लग जाता है। जो नील नदी की घाटी है लगभग 3500 वर्ष पूर्व की मानी जाती है, जो सुमेर सभ्यता है जिसे मैंने दजला फरात की घाटी कहा यह लगभग 3100 ईसा पूर्व की है, बीसी की है। तो नील नदी 3500, दजला फरात 3100 और सिंधु घाटी की सभ्यता चलिए हम थोड़ा सा बढ़ा देते हैं 2500, लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि नए रिसर्च में अब इसके और पुराने होने की बात सामने आ रही है, लेकिन जब तक इतिहासकार उसे मान्यता नहीं देते, मान्यता देकर के किताबों में शामिल नहीं कर लेते, तब तक हमें अभी उसे 2300 से 2500 वर्ष के बीच में ही कहीं मानना पड़ेगा। तो दोस्तों नील नदी की घाटी की सभ्यता, एक बात मैंने और कही मिश्र की सभ्यता, इसका मतलब साफ है कि ये जो नील नदी होगी इसका संबंध मिश्र से होगा। तो जब आप इतिहास को पढ़ रहे होते हैं और खासकर समझने के लिए पढ़ रहे होते हैं और स्पेशली अगर आप सिविल सर्विस की तैयारी के लिए पढ़ रहे होते हैं तो देखिए यहां आपको करना क्या चाहिए। मैं बीच बीच में थोड़े से इस तरह से भी हस्तक्षेप करता रहूंगा मित्रों, क्योंकि आप जानते हैं कि मेरे डेली ऑडियो लेक्चर का जो मूल उद्देश्य है वह है आपकी क्षमता का विकास करना, जो बार बार मैं याद दिलाता रहता हूं, पढ़ाना नहीं, कुछ सीमा तक यस समझाना, राइट। तो अब आपको चाहिए कि आप बकायदे नक्शे में जाकर के मिश्र को देखें, जिसे इंग्लिश में हम कहते हैं इजिप्ट की ये है कहां, तब आप सही मायने में इतिहास को समझ पाएंगे। तो आप एटलस खोलते हैं तो आपको इजिप्ट दिखाई देता है, और इजिप्ट कहां दिखाई देता है, अफ्रीका महाद्वीप में, आपके दिमाग में क्लियर हो जाता है कि अफ्रीका महाद्वीप में है। अफ्रीका महाद्वीप में नक्शे में आप उसे लोकेट करते हैं तो आपको पता लग जाता है कि यह तो उत्तर पूर्वी क्षेत्र में है, उत्तर पूर्वी क्षेत्र। और जब आप उत्तर पूर्वी क्षेत्र का पता लगाते हैं तो पता लगता है कि अरे यहीं से तो एशिया की शुरुआत हो गई है, मतलब बॉर्डर स्टेट है। अगर हम एशिया के पश्चिम भाग को ले लें और अफ्रीका के पूर्वी भाग को ले लें, उत्तर पूर्वी भाग जहां ये मिश्र है, तो आप पाएंगे कि ये दोनों महाद्वीप पड़ोसी है, बिल्कुल वैसे तो पड़ोसी है ही है लेकिन उस रूप में नहीं, इन दोनों के बीच में केवल एक रेड सी है, लाल सागर है, इसके बाद तो लगभग लगभग एक ही है ये। और अब आप इसको इससे पहले के लेक्चर से जोड़ करके देखिए, जो मैंने कहा था कि जो प्राचीनतम जो मानव है वो कहां विचर रहा होगा, कहां घूम रहा था, उसका जन्म कहां हुआ, उसका विकास कहां हुआ, तो मैंने कहा था अफ्रीका महाद्वीप और पश्चिम एशिया। तो अब आप अफ्रीका महाद्वीप पश्चिम एशिया को यहां से रिलेट कर दीजिए तो सिंधु घाटी की सभ्यता यहीं पनपी। देखिए कैसे चीजें कनेक्ट हो जाती हैं, और यही इतिहास की खूबसूरती भी है, मतलब मुझे तो इन सब चीजों में मित्र बहुत मजा आता है। फिर आप एक चीज और पाएंगे, जब मैं अभी आगे चल करके आपको बताऊंगा कि ये जो नील नदी है, ये नील नदी बेसिकली सबसे लंबी नदी है, लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड, लगभग 7000 किलोमीटर लंबी है, एग्जैक्ट है 67000 किलोमीटर कह लीजिए लंबी है, और ये विक्टोरिया झील से निकलती है। ये बात मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि प्री में कभी कभी इस तरह के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, है ना। तो मैं जब आपको किसी भी विषय पर बता रहा होता हूं तो मेरे दिमाग में वो पूरा परिदृश्य होता है, प्री एग्जामिनेशन, मेन एग्जामिनेशन और साथ ही सिविल सर्विस एग्जामिनेशन, कि कहां से किस तरह के प्रश्न बन सकते हैं, तो मैं उधर आपका ध्यान आकर्षित करता हूं। तो दोस्तों विक्टोरिया झील से निकलती है और भूमध्य सागर में गिर जाती है, आप उसमें भूमध्य सागर को भी ढूंढ लीजिए तो आपको बकायदे नील नदी का जो रूट है वो पता लग जाएगा। अब आप देखिए कि फिर आप एक वाक्य पढ़ेंगे इतिहास की किताब में कि ये जो नील नदी है ये बेसिकली प्राचीनतम काल से मिश्र और सूडान एक देश है, में जो पीने का पानी है या जो खेती का पानी है उसका प्राइमरी सोर्स रहा है, प्राथमिक सोर्स रहा है मिश्र और सूडान। अब आप नाम याद कर लीजिए सूडान, ठीक है सूडान याद हो गया, कोई रॉकेट साइंस तो है नहीं, बड़े आराम से याद हो गया, लेकिन आपको चाहिए एक सिंसियर स्टूडेंट के रूप में कि आप बकायदे देखें कि ये सूडान कहां है, तो पता लगेगा कि इजिप्ट के साउथ में उससे सटा हुआ ही सूडान है। तो सीधी सी बात है कि अब नदी उछल करके तो जाएगी नहीं ना, बहती हुई जा रही है, तो वो सूडान में भी बह रही है। तो मिस्र और सूडान, इन दोनों ही देशों में जो प्राथमिक स्रोत है जल का वो नील नदी है, बात खत्म हो गई। तो मित्रों आपको चाहिए कि आप इतिहास को इस तरीके से समझें, राइट। तो आई अब मैं अब जो नदी घाटी की सभ्यताएं हैं के तहत हम लोग जो मिस्र की सभ्यता को देख रहे हैं उसके कुछ महत्वपूर्ण जो विशेषताएं हैं, फीचर्स हैं, उनको देख लेते हैं। अब आप मित्रों जो नील नदी की घाटी जब हम कह रहे हैं तो स्वाभाविक है कि आपके दिमाग में आ गया होगा कि वो घाटी होगी, यानी कि दोनों ओर पहाड़ों से घिरा हुआ होगा। अब नील नदी की एक विशेषता ये थी कि साल भर में इसमें एक बार जोरदार बाढ़ आती थी, साल में एक बार, मतलब इसका करेक्टर ही था। तो जब बाढ़ आती थी तो देखिए उसका फायदा क्या होता है कि बाढ़ से हमें लगता है कि सब कुछ नष्ट हो जाएगा, अगर आप उस समय अपने को बचा लें तो बाढ़ तो हमेशा बनी नहीं रहेगी, वो बाढ़ उतर जाएगी। तो जब बाढ़ आती है तो अपने साथ बहुत उपजाऊ मिट्टी लाती है, बहुत उपजाऊ मिट्टी लाती है, जो मैंने गंगा के मैदान के बारे में अभी आपको बताया। और ये उपजाऊ मिट्टी कृषि के लिए सबसे उपयोगी है। तो स्वाभाविक है कि अब बिना खाद के उन्हें प्रकृति ही एक तरीके से मिट्टी ऐसी ला करके दे रही है जिसमें खूब सारी खाद मिली हुई है। तो ये प्रकृति का कितना बड़ा गिफ्ट है, इसीलिए नील नदी को उस क्षेत्र का वरदान भी माना जाता है। और भारत ने तो देखिए गंगा को अपनी माँ जैसा ही दर्जा दिया, गंगा मैया, और बकायदे हम उनकी आराधना करते हैं, गंगा मैया तो है चुनरी चढ़ाईबो। ये मनुष्य का एक तरीके से इन नदियों के प्रति व्यक्त किया गया कृतज्ञता ज्ञापन है, है ना। भले ही हम उसे अब धर्म का नाम दे दें लेकिन हमारी श्रद्धा की अभिव्यक्ति है कि आप हमारे जीवन के लिए कितना कर रहे हैं। मिस्र में दोस्तों वर्षा बहुत कम होती है, तो इसलिए जो सिंचाई का जो साधन था वो नील नदी ही थी। और चूंकि वर्षा कम होती है, अब आप देखिए कि कैसे कनेक्ट होती चली जाती है चीजें, तो उनको सिंचाई के लिए कोई तरीके ढूंढने थे, तो मिस्र ने सिंचाई के बहुत अच्छे अच्छे तरीके विकसित किए, बहुत अच्छे अच्छे तरीके। और नदी थी तो इस नदी का फायदा उन्होंने ये उठाया कि नदी में आप पत्थर डाल दीजिए, लकड़ी डाल दीजिए, तो वो ट्रांसपोर्ट होकर के दूसरी जगह चला जाएगा, परिवहन उसका हो जाएगा ऑटोमेटिक। इसीलिए आप पाते हैं कि मिस्र में इतने बड़े बड़े पिरामिड बने, क्योंकि उनको पत्थर को एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाने की बहुत ज्यादा सुविधा थी। अब आप देखिए कि कैसे एक छोटी सी चीज होती है और उसके दूसरे कितने बड़े प्रभाव होते हैं। चूंकि पत्थरों को आप एक जगह से दूसरी जगह पर ले जा रहे हैं तो आपने पिरामिड बना दिए, और ठीक इसी तरह से आपने बड़े बड़े मकान भी बनाए। मिस्र में बहुत बड़े बड़े मकान हैं। देखिए मिस्र में जो राजा हुआ करता था उसका एक नाम था फराओ, फराओ मतलब राजा, फराओ राजा को फराओ कहते थे, फराओ, या कहीं कहीं आपको फराउन भी मिल जाएगा। मालूम इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है बड़े मकानों में रहने वाला व्यक्ति, यानी कि जिसे हम कह लीजिए महल में रहने वाला व्यक्ति, तो वो राजा होगा। अब बड़े मकान बनते कैसे थे, तो उसमें नील नदी का देखिए कि योगदान रहा है। इसकी सभ्यता की एक जो बहुत बड़ी बात है जो इसने दुनिया को दिया है दोस्तों, आप आज जिस पर लिखते हैं हिंदी में उसे कागज कहते हैं और इंग्लिश में उसे आप पेपर कहते हैं, पेपर। ये पेपर शब्द आया कहां से है? ये मिस्र की सभ्यता से हमें मिला है। असली में वहां जो नदी, जो नील नदी है और जो दूसरी भी नदियां होगी, उनके किनारे एक सरकंडा घास, लंबे लंबे डंठल वाले होते हैं ना, एक घास उगा करती थी जिसका नाम था पेपिराज, उसका नाम ही था पेपिराज। और इस पेपिराज से दो चीजें बनाई जाती थी, एक तो कागज बना लिया जाता था और दूसरा जो सरकंडा होता था उससे कलम बना ली जाती थी। हम लोगों के समय में मुझे मालूम है कि पांचवीं क्लास तक आप पेन का इस्तेमाल नहीं कर सकते थे, पेन का इस्तेमाल सरकंडे के पेन का ही इस्तेमाल होता था, मतलब वो लकड़ी का पेन पेन होता था, सामने उसके हिस्से को नुकीला कर लिया जाता था और उसे स्याही में डुबो डुबो करके लिखा जाता था, उससे राइटिंग बहुत अच्छी बनती थी। तो ये देखिए मिस्र से आया हुआ है, ये जो लिखने की जो कला है वो मिस्र ने हमें दी है। मिस्र के लोग रात भर भ्रमण करते रहते थे, तो ज्योतिष विद्या हमें मिली, पिरामिड नाम आपने सुने हैं, पिरामिड जैसे चीजें बनाने की कला अगर उस समय तक विकसित हो चुकी थी, क्योंकि जो पिरामिड भी है वो लगभग लगभग 3000 साल पुरानी है, 3000 वर्ष बीसी की, 5000 साल पुरानी। गीजा का पिरामिड आपने सुना होगा, गीजा का पिरामिड जो सबसे बड़ा पिरामिड है और दुनिया के सात आश्चर्यों में से एक माना जाता है, वो लगभग 3000 बीसी का है। कल्पना करके देखिए कि उस समय कितनी चीजें डेवलप हो चुकी थी। देख रहे हैं ना आप सभ्यता और संस्कृति, कि आप मृत व्यक्ति के शरीर को सुरक्षित रख सकते हैं, जिसे हम कहते हैं मम्मी। आज भी वहां पिरामिड में मम्मियां सुरक्षित हैं। वो बड़े नो डाउट कि वो राजा, राजा के वंश के लोग रहे होंगे, अब वो एक अलग बात है, उस पर हम लोग नहीं आ रहे हैं। तो दोस्तों, जहां पिरामिड बन रहे होंगे, जहां मम्मी इस तरह से सुरक्षित रखी जा रही होंगी, शव सुरक्षित रखे जा रहे होंगे, आप कल्पना करके देखिए कि व्यापार में कितनी उन्नति वहां हो चुकी होगी। व्यापार काफी उन्नत हो चुका था, गेहूं का तो जबरदस्त उत्पादन ही होता था। और इतिहास के रूप में मैं आपको आखिरी ये बात बताना चाहूंगा कि ईसा के 29 BC पूर्व, यानी कि ईसा के 29 साल पूर्व, रोम साम्राज्य ने इस पर आक्रमण किया, मिस्र पर आक्रमण किया। क्लियोपेट्रा का नाम अगर आपने सुना हो तो वो इसी के आसपास की घटना है। और इसके बाद जो मिस्र है वो रोम में मिला लिया गया, मिस्र रोम में मिला लिया गया। इसीलिए बहुत से लोगों को ये कन्फ्यूजन होता है अभी भी, जो यूरोप का जब वो इतिहास पढ़ते हैं, कि मिस्र यूरोप में है, या तो उन्हें कन्फ्यूजन हो जाता है कि मिस्र यूरोप में है, या कुछ लोगों को कन्फ्यूजन हो जाता है कि नहीं, वह एशिया में है। यूरोप का कन्फ्यूजन आप देखेंगे कि चूंकि अफ्रीका के बिल्कुल उत्तर पूर्वी भाग में मिस्र है, तो फिर आप नक्शा देखेंगे तो वो यूरोप के बहुत नजदीक पड़ जाता है। और इटली, जो मैंने अभी रोम की बात कही, तो इटली बिल्कुल रोम, आपके जो इटली है वो यूरोप के दक्षिण में है। तो आपको रोम और मिस्र, इन दोनों में बहुत कम दूरियां दिखाई देंगी, तो बट नेचुरल है कि वो इस पर अटैक कर सकते हैं। तो दोस्तों, खासकर मैंने मिस्र की सभ्यता के माध्यम से दो चीजें आपको बताई, एक नदी घाटी की सभ्यता के चरित्र के बारे में, और दूसरा स्पेशली जिस पर मैंने ज्यादा जोर दिया वो ये है कि इतिहास को कैसे पढ़ा जाना चाहिए। तो मित्रों, अब इसी के साथ ही आज के इस डेली ऑडियो लेक्चर को यहीं समाप्त करते हैं। कल के लेक्चर में फिर अब हम दजला फरात की सभ्यता के बारे में कुछ बातें करेंगे। नमस्कार।